पाठ तीन, उद्धार की योजना। जब यह मालूम हुआ कि जिस जगत की सृष्टि कर ईश्वर ने वहां मनुष्य को रखा था, वह पाप में गिरकर दुख, कष्ट, बीमारी और मृत्यु लाई है और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, तो स्वर्ग में उदासी छा गई। आदम के वंश के सब लोग मरेंगे। मैंने यीशु के चेहरे में उदासी और सहानुभूति की झलक देखी। मैंने तुरंत ही एक तेज ज्योति देखी जो पिता के पास आकर घेर ली। जब यीशु पिता से बात कर रहा था तो दूतों की चिंता और भी बढ़ गई। तीन बार वह पिता की महिमा रूपी ज्योति से ढाका गया, पर आखिर में निकला। उसके चेहरे में घबराहट और कष्ट की झलक नहीं थी, पर उदारता और नम्रता से ऐसा भरा हुआ दिखाई दिया जिसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता है। अंत में उसने स्वर्गदूतों का दल को बता दिया कि मनुष्य को बचाने का उपाय ढूंढा गया है। उसने कहा कि मैं पिता से अर्जी कर रहा था मनुष्य को बचाने वास्ते। मैं अपने प्राण को बलिदान करना चाहता हूं जिसके द्वारा मनुष्य को उद्धार प्राप्त हो। उसके खून की कीमत से, ईश्वर की व्यवस्था को मानने से, वह ईश्वर का अनुग्रह उनके लिए प्राप्त करे, फिर से सुंदर बागन में आकर जीवन का वृक्ष का फल खा सके। शुरू में तो स्वर्गदूतों के बीच हर्ष नहीं देखा गया था, क्योंकि उनका कप्तान यीशु ने उनके बीच उद्धार की योजना के विषय कुछ भी नहीं बताया था, पर कुछ न छिपाकर अपनी मृत्यु का भी अंत में वर्णन किया। उसने कहा कि वह पिता के वचनों और पापी मानव के बीच खड़ा होकर पुल बनेगा। वह उनके पापों और अपराधों का बोझ ढोएगा। इस पर भी बहुत कम लोग उसे ईश्वर का पुत्र सरीखा मानेंगे। प्रायः सब लोग उसे घृणा कर इनकार करेंगे। वह स्वर्ग की सब महिमा को छोड़कर पृथ्वी में मनुष्य का अवतार लेकर आएगा। मनुष्य के समान दीन होगा। अपने अनुभव से सब प्रकार की परीक्षाओं और प्रलोभनों का सामना करेगा जिसे मानव जाति को करना पड़ता है। अपने अनुभव से उन्हें परीक्षाओं से बचाएगा। अंत में एक शिक्षक होने के नाते उन्हें बचाकर अपना काम पूरा करेगा। उसे वह मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाकर शैतान की युक्ति अनुसार सब प्रकार के कष्टों को झेलकर अंत में मरना पड़ेगा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पापी की तरह क्रूस क्राट का दुख भी उठाना होगा। उसे ऐसी बुरी मौत मिलेगी जिसे स्वर्गदूत भी न देखकर अपने चेहरे ढांक लेंगे। सिर्फ शारीरिक वेदना नहीं, मानसिक वेदना भी उसे सहन करना पड़ेगा। शारीरिक वेदना तो मानसिक वेदना से ज्यादा होगी। सारा जगत के पापों का बोझ उस पर पड़ेगा। उसने उन्हें बताया कि मरकर तीसरा दिन जी उठकर अपने पिता के पास जाकर पापियों की बिचवाई करेगा। स्वर्गदूतों ने उसको घुटना टेक प्रणाम किया। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। यीशु ने कहा कि मरने के द्वारा वह बहुत लोगों को बचाएगा। इस ऋण को स्वर्गदूत चुका नहीं सकते हैं। केवल यीशु का जीवन ही मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। यीशु ने उन्हें कहा कि इस बचाव काम में उनका भी हिस्सा है, उन्हें भी काम करना चाहिए। उनके साथ रहकर विभिन्न समय में दृढ़ करना है। यीशु को मनुष्य का स्वभाव लेना था, पर उसकी शक्ति स्वर्गदूतों की शक्ति से बढ़कर है। उन्हें यीशु की नम्रता को देखनी थी। यीशु का दुख तकलीफ को, जिसे लोग देंगे, देखकर स्वर्गदूत भारी संवेदना से भर जाएंगे। प्रेमवश उसे बचाने की कोशिश करेंगे, पर वे उसके ऊपर जो दुख कष्ट होगा उसे रोक न पाएंगे। वे उसके पुनरुज्जीवन में भी भाग लेंगे जिसको पिता ने पहले से उपाय किया था। पवित्रता की उदासी से उसने दूतों को शांति प्रदान कर उत्साहित किया। उसके बाद बताया कि जिन्हें वह बचा लेगा वे उसके साथ होंगे। अपनी मृत्यु के कारण सबों का पाप मिटा डालेगा। मृत्यु का सरदार की शक्ति का विनाश करेगा। उसका पिता उसे स्वर्ग का राज्य देगा जो सब राज्यों से श्रेष्ठ होगा। वह उस पर सदा राज्य करता रहेगा। शैतान और दुष्ट लोग सब विनाश किए जाएंगे। वे फिर कभी राज्य में गड़बड़ी नहीं फैलाएंगे और न अपवित्र करेंगे। यही नई पृथ्वी और नया आकाश होंगे। यीशु ने स्वर्गदूतों से कहा कि ईश्वर की योजना में शामिल होकर आनंद करो, क्योंकि पतित मनुष्यों का उद्धार मेरी मृत्यु के द्वारा होगा। अतः स्वर्ग में ईश्वर के साथ आनंद करो। अब स्वर्ग में ऐसा आनंद छा गया जो वर्णन से परे हैं। स्वर्गदूतों ने ईश्वर की महिमा और स्तुति के गीत गाए। उन्होंने वीणा बजाते हुए ऐसा गीत गाया जो पहले नहीं गाए थे, क्योंकि परमेश्वर का असीम अनुग्रह से उसका पुत्र यीशु को उपद्रवी जाति के लिए जगत में आकर प्राण देना था। यीशु का निस्वार्थ बलिदान को देखकर प्रशंसा और महिमा के गीत गाए गए, क्योंकि वह ईश्वर के पास धरती पर आने को राजी हुआ है। वह इस जगत में आकर दुख कष्ट झेलते हुए दूसरों के वास्ते निंदनीय मरण मरने को तैयार हुआ है। स्वर्गदूत ने कहा कि ईश्वर ने अपना प्यारा एकलौता पुत्र को बिना हिचकिचाहट के दे दिया है। न ही ईश्वर को सोचना पड़ा कि क्या वह अपना पुत्र को जगत में भेजे कि पापियों को मरने दे। स्वर्गदूत सोच रहे थे कि क्या उनमें से कोई होगा जो इस जगत में आकर पापियों के लिए मरे। मेरा राक्षस दूत ने कहा कि ऐसा कोई दूत में योग्यता नहीं थी कि वह आकर इनके लिए मरे। पाप इतना बड़ा था कि स्वर्गदूत की मृत्यु उसका मूल्य नहीं चुका सकता था। यीशु मसीह को छोड़कर कोई उनकी बिचवाई नहीं कर सकता था और न पाप की मंजूरी का बदला चुका सकता था। सिर्फ वही एकमात्र है जो खोया हुआ मानव को दुख कष्टों से भरी आशाहीन गर्त से बचा सकता है। स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरने और चढ़ने का काम सौंपा गया। उन्हें परमेश्वर के पुत्रों का दुख दर्द और कष्टों में शांति का मलहम लगाने को कहा गया। बुरे दूतों से ईश्वर की प्रजाओं की रक्षा का काम भी सौंपा गया। शैतान हर समय उनके बीच में अंधकार लाता है। इस वक्त ईश्वर का वचन रूपी प्रकाश से उज्ज्वलित करने को कहा गया। खोए हुओं को बचाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं था। न व्यवस्था को बदला जा सकता था और न ही ऐसे ही क्षमा दी जा सकती थी। इसलिए ईश्वर का पुत्र यीशु को मनुष्यों का आज्ञा तोड़कर पाप करने के कारण मरना पड़ा। शैतान अपने दूतों के साथ फिर आनंद करने लगा, क्योंकि मनुष्य को छुड़ाने के लिए यीशु को स्वर्ग की महिमा को छोड़कर धरती में आना पड़ा। अपने दूतों को पहले से शैतान ने बता दिया कि जब यीशु मनुष्य का रूप लेगा तो उस पर विजय प्राप्त करेगा। वह उद्धार की योजना को भी बिगाड़ डालेगा। श्रीमती व्हाइट कहती है कि उस वक्त शैतान को ऊंचा उठाया गया और उनके बीच खुशी दिखाई दी। उसके बाद अभी जैसा है वैसा दिखाया गया। वह अभी भी अंधकार का राकुमार है और उसका डील डॉल पहले जैसा है, परंतु वह एक पतित स्वर्गदूत है। अभी उसके चेहरे से चिंता, घबराहट, ईर्ष्या, ठाग, बदमाशी, नाखुश और सब प्रकार की बुराई झलकती हैं। उसका पहले का चेहरा बहुत सुंदर था। उसका चेहरा आंखों से पीछे की ओर ढालू था और उसमें सिकुड़न आई थी। मैंने देखा कि वह अपने को बहुत दिनों से नीचा बनाया था, इसलिए उसके सब अच्छे गुण खत्म हो चुके थे। इसके बदले सब बुरे गुण भरे पड़े थे। उसकी आंखों से धूर्तता झलकती थी, पर आंखों की रोशनी तो थी। उसका शक्ल तो बड़ा था, पर उसकी मांसपेशियां ढीली ढाली थीं, जो हाथों और चेहरों से झूल रही थीं। मैंने देखा कि उसकी ठोड़ी बाईं हाथ पर टीकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी चिंता में डूबा हुआ है। जब वह मुस्कुराता है तो मुझे डर सा लगता है। वह शैतानिक आचार विचार और धूर्तता से परिपूर्ण था। जब वह किसी को अपना शिकार बनाता है और उसे अपने कब्जे में करता है, तब ही इस प्रकार की हंसी हंसता है। यशाया 53 के कुछ अंश हैं, पर सब नहीं।